Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, 8th Skand, 3rd Adhyay, Shlok Sankhya 30. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय, तत्थाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासनां व्रजवधू, वर्केनया कपिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेम तुमर्थो महा, श्रीचैतन्यमहाप्रभु मध्यमिदं तत्थाग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविन्द दामो धरमाधवेति। प्रजेव सन्तं नवनीत चोरम्, गोपांगनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम्, चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि।
श्री कृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि मूकं कुरु तु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं
ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्लोक नंबर 29 तक गजेंद्र ने अपनी स्तुति समाप्त की है और इनकी अद्भुत स्तुति को सुनकर शुकदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर बात कह रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। श्री शुक उवाच
एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनि विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदा भीमाना नैति यदोपसश्रीपूर्णिकलामकत्वा तत्राखिला मरमयो हरिराविरासि एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदा भीमाना नैति यदोपसश्रीपूर्णिकलामकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदा भीमाना नैति यदोपसश्रीपूर्णिकलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत्
शब्दार्थ श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं एवं एवं मतलब इस प्रकार। इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे अभी हमने गजेंद्र की स्तुति सुनी, इस प्रकार से गजेंद्र की अद्भुत स्तुति सुनी जिसमें एक बात थी कि उन्होंने भगवान का कोई नाम, भगवान का कोई रूप, भगवान के किसी विशेष बात के बारे में नहीं बताया कि मैं उस भगवान के लिए कह रहा हूँ। तो एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष, उन्होंने जो उपवर्णित किया था, उपवर्ण मतलब इतनी अच्छी स्तुति तो गाई गजेंद्र ने, परंतु वो निर्विशेष भाव से गाई। अब देखो विशेष का क्या मतलब होता है, विशेष मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई अलग अलग विशेषताएं होती है ना, जैसे किसी के अंदर कोई उसके नेत्र कैसे होते हैं, उनके नेत्र कैसे होते हैं, उनके पैर कैसे होते हैं, वो किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, या किस तरह का आयुध या हथियार उठाते हैं, मतलब उनके बारे में स्पेशल कोई ऐसी बात की जाए जिसके बारे में पता चले कि हाँ ये उसे, जैसे हम कृष्ण के बारे में हमेशा बात करते हैं तो या तो उनके कमल नेत्रों के विषय में कहते हैं, उनके पीतांबर के विषय में कहते हैं, उनकी वंशी के विषय में या उनकी टेढ़ी चाल के विषय में, तो इस तरह से भगवान कृष्ण के विषय में जब बात की जाती है ना स्पेशल, तो बहुत सारी विशेषताएं बताई जाती हैं। उसी प्रकार से जो दूसरे अन्य किसी भी देवी जी से कहा गया ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमान, मतलब विविध लिंग कि उनके जितने भी ब्रह्मा और जितने भी दूसरे
देवी देवता हैं, उनके विविध लिंग अलग अलग चिन्ह होते हैं उनके अंदर, मतलब उनके पृथक पृथक स्वरूप है। यदि ब्रह्मा जी के बारे में बात की जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं, हे कमंडल धारी ब्रह्मा जी या चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। शिव जी के बारे में बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि गंगाधर, या वो गले में सर्प की माला पहनते, या इंद्र के बारे में कहा जाए तो वज्रधारी, मतलब कुछ न कुछ ये कहते हैं। ब्रह्मा देव विविध लिंग विधामिमाना, उनको ये अभिमान होता है कि यदि कोई उस पर्टिकुलर चिन्ह को बोलकर या उस किसी पर्टिकुलर नाम से, मतलब हर एक देवी देवता के अलग अलग नाम होते हैं और सब देवी देवताओं के डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह भी होते हैं, तो वो सोचते हैं जब कोई स्पेशल हमारा नाम लेकर पुकारेगा और हमारे चिन्ह के हिसाब से हमें बोलेगा तो वो सहज ही आ जाएंगे, है ना। अब किसी भी देवता का तो उन्होंने नाम लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि वो इतनी अच्छी स्तुति कर रहे, नाम भले नहीं ले रहे, तो समझो ब्रह्मा जी ने या इंद्र ने सोचा, चलो ठीक है अभी क्या करता हूँ, उसकी जाके रक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था 1000 साल तक युद्ध चल रहा था, तो सारे देवी देवता आकाश में खड़े होकर युद्ध देख रहे थे, वो समर्थ थे। एक मगरमच्छ ही तो था, किसी भी देवता के लिए उसको मारना कोई बड़ी बात थोड़ी थी, तो आना चाहते थे। लेकिन चक्रवर्ती पाद तो यहाँ तक कहते हैं कि जब इंद्र आदि देवता ने ये स्तुति सुनी, वो आना चाहते थे, तब तो गजेंद्र ने कहा, यस्य ब्रह्मा दयो देवा वेदालोकाचराचरा नाम रूप विभेदेना फल्ग्याच कलया कृता, कि वो ब्रह्मा आदि देवता जिस भगवान की छोटी सी कला है, अल्प कला से वो प्रकट होते हैं, मैं उस भगवान की को स्मरण कर रहा हूँ, उस भगवान की शरण में जा रहा हूँ, वही भगवान आए मेरी रक्षा करने की। तब चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि फिर तो इंद्र आदि देवता जो उसकी रक्षा करना चाहते भी थे, वो बोलने लगे, तब तो तुम मरना चाहते हो निश्चित रूप से, जिन प्रभु को तुम पुकार रहे हो वो इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और वो इतनी छोटी छोटी बात के लिए आते नहीं है, कितने ही हाथी रोज मरते होंगे, कितने ही मगरमच्छ उनको पकड़ते होंगे, तुम क्या सोचते हो एक एक जानवर को बचाने के लिए भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर इस पृथ्वी पर आएंगे। भगवान ऐसे अर्जेंट के काम के लिए बार बार इस संसार में नहीं आते हैं, तुम तो लगता है मरना चाहते हो। वरना तो लोग देखो, सारे लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, देवताओं की इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि देवता जल्दी से प्रसन्न होकर उनको उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता बताती है, कामस्तस्य हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं के द्वारा हर ली गई है वही देवताओं के पास जाते हैं। तो गजेंद्र की बुद्धि, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि वो ध्यान लगा रहे थे भगवान पर और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, जिसके कारण वो इतनी सुंदर स्तुति कर रहे थे, और पिछले जन्म का भी बहुत सारे पुण्य कर्मों का उसके पास फुल फल था, जिसके कारण उसकी बुद्धि पवित्र थी और वो साक्षात भगवान को पुकार रहे थे। भले ही यहाँ पर हमें देखना चाहिए निर्विशेषम लिखा हुआ है, एवं गजेंद्र उपवर्णित विशेषम, गजेंद्र ने किसी भी भगवान की विशेषता का वर्णन नहीं किया, वो भले ही निर्विशेष भाव से भगवान को स्मरण कर रहे थे बिना मूर्ति के भेद के। वो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भले ही उसने नहीं बोला भगवान का कोई भी नाम, परंतु जिसको बुलाया वही तो आया। साफ साफ जाहिर है, जब किसी भी देवता को नहीं बुलाया है, जब उसने कहा है कि मुझे परम देवता की शरण में जा रहा हूँ जो इन समस्त देवताओं को बनाने वाला है, सारे देवता जिसकी एक छोटी सी कला मात्र है, तो उसी भगवान की शरण में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर निर्विशेष का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी निराकार को मानता। शब्दों को हमें ठीक से समझना चाहिए, एक ही शब्द के समय के अनुसार भिन्न भिन्न मतलब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गजेंद्र ने तो निराकार भगवान की उपासना की थी, परंतु यदि वो निराकार की उपासना करते तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासि, फिर साक्षात हरि कैसे प्रकट हो गए। जब उसने भगवान को पुकारा तभी तो वो भगवान आए। तो हमें ये समझना चाहिए कि विभिन्न समय में विभिन्न शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि देखो ये प्रसाद है, निर्विशेष भाव से सबको बांटो, तो इसका मतलब क्या, आप किसी निराकार भाव से बांट लोगे कि नहीं? क्या निर्विशेष का मतलब क्या है, किसी का फेस मत देखो, बस देते जाओ, ये नहीं देखो कि है ना उसको ज्यादा दो, उसको निर्विशेष भाव। तो ये भगवान का नाम भले उसने नहीं लिया, लेकिन वो उसी भगवान को पुकार रहे थे जो इन समस्त देवी देवताओं के आदि हैं, जो ब्रह्मा के भी आदि हैं, सारे देवी देवता जिनके अंश हैं, उसी भगवान को बुला रहे थे। तो आगे कहते हैं, नैति यदोपस श्री पूर्णिकलात्मक, नैति वो दूसरे देवी देवता तो आए ही नहीं क्योंकि उनको तो बुला ही नहीं जा रहा था। नैते यदोपसु यानी सस्रिपु, यानी कि और कोई दूसरे उनके पास नहीं आए, परंतु निखल आत्मा का, निखल यानी कि सारी आत्मकत्व, यानी भगवान तो समस्त जितने हर एक के हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। तो तत्राखिला मरमयो हरिराग, तत्राखिला फिर उस समय कौन आया, जो अखिल यानी समस्त ब्रह्मांड के अमरमय देवताओं से, अभी सारे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं उनके आदि भगवान हैं, उनके वास्तविक स्रोत भगवान हैं। तो जब भगवान वहां पर आ गए तो समझना चाहिए सारे देवी देवता भी वहां पर आ गए। लज्जित हो रहे थे वो कि इतने छोटे से काम के लिए हमारे भगवान को आना पड़ा, हम भगवान के दास किस लिए हैं, हमें भगवान की के इस कार्य को करना चाहिए था, लेकिन धिक्कार है कि भगवान को अपने वैकुंठ से यहाँ पर एक गजेंद्र को छुड़ाने के लिए आना पड़ा। तो सारे देवी देवता भी उनके साथ आए और हरि आविरासित, साक्षात हरि वहां पर प्रकट हुए। अनुवाद, श्री शुकदेव गोस्वामी ने आके कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन नहीं किया, अतएव उनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए। किंतु भगवान चूंकि हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वह किसी परम सत्ता लक्ष्य कर रहा है। मतलब उसने पहले ही कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमह, कि समस्त जितने भी ईश हैं उनके परम ईश्वर जो पुरुष आदि बीज है, जो समस्त जीवों के आदि बीज हैं, और उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो शुरू से ही उसने किसी देवी देवता को बुलाया नहीं था, परम सत्ता को ही वो लक्ष्य कर रहा था। यद्यपि उससे यह कोई पता नहीं था कि यह परम सत्ता कौन है, उसने अटकल लगाई कि ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबों के ऊपर है। ऐसी स्थिति में भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा है, यह तो उस ब्रह्म को बुला रहा है जो हम सबों के ऊपर है, जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया था। भगवान के विविध अंश हैं जिनमें देवता, मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं, जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गजेंद्र को ये तो खबर नहीं थी कि भगवान कौन है, परंतु ये तो पता था ना कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब भी सुरक्षा के लिए भगवान के अधीन है। तो ये उनको ज्ञान था, तो फिर इसीलिए उन्होंने भगवान के अंशों को नहीं बुलाया, साक्षात भगवान को बुलाया। और वो शास्त्र कहता है हरिम विना नायव मृतिम तरंती, उसको कोई भौतिक वस्तु तो चाहिए ही नहीं थी ना, उसको इस भौतिक शरीर से भी सुरक्षा नहीं चाहिए थी, उसको तो आध्यात्मिक लोक में अपना वास्तविक स्वरूप चाहिए था। तो उसके लिए ये सारे देवी देवता तो उसकी कोई सहायता कर नहीं सकते। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हरिम विना नयते मृत्युम तरंती, कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता, केवल भगवान ही संहार के खतरों से रक्षा कर सकते, केवल भगवान ही आपकी वास्तविक सुरक्षा आपको प्रदान कर सकते हैं। अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, किसी देवी देवता के नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.20 में पुष्टि की गई है, कामैस्तैस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं, जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अंगान्य देवता, शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाह्य हैं, ना, जैसे हमारा एक शरीर है, अंदर कौन है, आत्मा है, और बाहर डिफरेंट टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। उसी प्रकार समग्र विश्व की आत्मा नारायण या भगवान विष्णु है, और देवता, मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के विभिन्न अंग हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है, और जब जड़ों को पानी नहीं दिया जाता तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन, और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की पूजा करे जो सबों के आदि मूल है। यदि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं, क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में है। ज्यों ही भगवान यह समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतया उनकी शरण आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत ही कार्यवाही करते हैं। कितना सुंदर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले ही भगवान का गौलोक वृंदावन धाम बहुत दूर है, हमारी आवाज वहां तक तो नहीं जा सकती, लेकिन यदि हम शुद्ध हृदय से भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान जान जाते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान का नाम चेतन है, ये जड़ शब्द नहीं है, इनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। वो जान जाते हैं कि ये मनुष्य किस विचार से, किस भाव से मुझे पुकार रहा है, और जब वो जान जाते हैं कि ये जीव पवित्र हृदय से मेरी शरण में आया है, मुझसे सुरक्षा प्राप्त करने की याचना कर रहा है, तो भगवान स्वतः उसी समय रिस्पॉन्स देते हैं, कार्यवाही करते हैं। अलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा की जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि भगवान प्रसन्न हो तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यदि हमने भगवान की पूजा शुरू कर दी और बाकी हम जो अपने इष्ट की पूजा करते हैं वो पूजा छोड़ दी तो भगवान कितने वो हमारे देवी देवता कितने नाराज हो जाएंगे, हमारे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे। परंतु ये बुद्धिहीनता है। देवता भगवान के अंश है। तो जिस प्रकार अगर वृक्ष को सींचना है और वृक्ष की जड़ों में पानी डालते हैं, पत्तों को एक एक करके पानी नहीं दे रहे हैं, तो क्या पत्ते दुखी होंगे या अस्वस्थ होंगे? नहीं, सारे पत्ते तृप्त हो जाएंगे क्योंकि आपने वृक्ष को पानी दिया। उसी तरह यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सारे मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, सारा विश्व संतुष्ट हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, वास्तव में भक्तों एक एक देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता हैं, न जाने कितने ग्रह हैं, न जाने कितने नक्षत्र हैं, एक एक को संतुष्ट करना इस छोटे से जीवन में क्या संभव है? कदापि नहीं। लेकिन एक अकेले यदि कृष्ण को प्रसन्न कर दिया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। और कृष्ण को प्रसन्न करना कोई मुश्किल भी नहीं है, बस प्रेम से उनके नाम का उच्चारण करना है, उनकी कथाओं को श्रद्धा से श्रवण करना है। अगर हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा गजेंद्र ने क्या किया, केवल भगवान को पुकार ही तो रहा था, उनकी स्तुति करके बार बार यही तो कह रहा था, हे भगवान आप समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। यदि हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के साथ साथ समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यथा तरो मूल निशेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजो पशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से तना शाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित होते हैं, उसी प्रकार उदर में भोजन से के पहुंचने से इंद्रियां तथा शरीर के अंग चैतन्य हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश स्वरूप देवी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 4.31.14। जब भगवान की पूजा की जाती है तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता की भक्ति करते हैं, उससे वो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हम उन्हीं के लोक को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान बताते हैं 9.25 में, यान्ति देवा वृत्तान् देवा, अगर आप देवताओं की भक्ति करोगे तो आप देवताओं के लोक में जाओगे, और देवताओं के लोक में जाकर भी तो पुनः क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, वो देवता आपको उतना ही पुण्य दे सकते हैं जितना आपने उनका उनकी भक्ति की है। वो आपको अनश्वर पुण्य नहीं दे सकते, लेकिन भगवान कहते हैं कि यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अगर मेरी भक्ति करोगे, यान्ति मध्या जिनोपी माम, अगर मेरी भक्ति करेंगे तो मेरे पास आएंगे और मेरे पास आएंगे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे और वहां से तुम्हें कभी कोई नहीं निकालेगा। तो हमें अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण रूपी से ये निर्णय करना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके सरेंडर। हम अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि भगवान के माता पिता नंद और यशोदा सारे गोकुलवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, मगर उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर भगवान की पूजा, गोवर्धन की पूजा करना स्टार्ट कर दी तो क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने उनका, सबक सिखा दिया उसे भगवान ने। अब कोई भी देवी देवता की यदि हम पूजा करते थे और अगर उसको छोड़कर कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब आपको मां शुचा, फिर आप क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रजा, मेरी एक अकेली की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हें किसी भी पाप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अहम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्षी श्यामी मां शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, मत डरो, अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें और कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाएगा, क्योंकि योगक्षेम वहामि हम, तुम्हारी समस्त जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी समस्त अपनी वस्तुओं को जो तुम्हारे पास है उनको सुरक्षा में प्रदान करूंगा, तुम्हें तो केवल एक ही काम करना है, मेरी शरण में आ जाओ और निश्चित हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गजेंद्र हमें ये सिखा रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कोई भी हमें भौतिक कष्टों से या फिर जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकता है। हरिम विना नैति मृत्यु तरंते, बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं छुड़ा सकता, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।